नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, देश के विकास में महिलाओं को अग्रणी भूमिका प्रदान करने का सबसे प्रभावी उपाय बेटियों को सर्वोत्तम शिक्षा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शिक्षक दिवस पर दिल्ली के शिक्षकों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु और सेवा कर को तर्कसंगत बनाने को आजादी के बाद का सबसे बड़ा सुधार बताया। सरस आजीविका मेला 2025 मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आज से शुरू। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ओणम और ईद उल मिलाद की बधाई दी। अब समाचार विस्तार से। आज शिक्षक दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश के विकास में महिलाओं को अग्रणी भूमिका प्रदान करने का सबसे प्रभावी उपाय बेटियों को सर्वोत्तम शिक्षा देना है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हाल के वर्षों में उच्च शिक्षा के दाखिले में बालिकाओं की संख्या बढ़ी है।
बालिकाओं की शिक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। बेटियों की शिक्षा में निवेश करके हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य निवेश करते हैं। आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा की आधारशिला रखने वाली सावित्रीबाई फुले जी की स्मृति में मैं उनको सादर नमन करती हूँ।
राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा से कमजोर वर्गों के बच्चों का सशक्तिकरण होता है और उनकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा को सुलभ और स्कूल स्तर पर सरल बनाने पर विशेष बल दिया गया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि भारत एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बने। इसके लिए ये अनिवार्य है कि हमारी शिक्षकों की पहचान विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के रूप में हो। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और स्किल एजुकेशन, शिक्षा के इन तीनों क्षेत्रों में हमारी संस्थानों और शिक्षकों को बढ़ चढ़कर योगदान देना है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज शिक्षक दिवस पर दिल्ली सरकार के शिक्षक महाकुंभ में दिल्ली के शिक्षकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि मनुष्य के जीवन में शिक्षक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि शिक्षक ही राष्ट्र निर्माण के प्रमुख शिल्पकार हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि शिक्षक ही देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक केवल विद्यार्थियों को पढ़ाते नहीं बल्कि उनका देश के लिए चरित्र निर्माण भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मस्तिष्क को पोषित करने के लिए शिक्षकों का समर्पण एक मजबूत और उज्ज्वल भविष्य की नींव है। उन्होंने कहा कि उनकी प्रतिबद्धता और करुणा महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने प्रख्यात विद्वान और शिक्षक डॉ एस राधाकृष्णन की जयंती पर उनके जीवन और विचारों को भी याद किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि शिक्षक केवल ज्ञान के दाता नहीं होते, बल्कि वे जीवन के पथ प्रदर्शक, प्रेरणा स्रोत और आदर्श भी होते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी शिक्षकों का अपने धैर्य, समर्पण और निरंतर प्रयासों से आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा दिखाने के लिए आभार भी व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को पूरी क्षमता के अनुसार खेलने में मदद कर रहे सभी गुरुओं को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि शिक्षकों के कठिन परिश्रम और समर्पण से उत्कृष्टता को बढ़ावा मिला है, जिंदगियां रोशन हुई है और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा मिला है। श्री प्रधान ने कहा कि शिक्षक केवल पढ़ने पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि शिक्षक राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना जगाने का भी काम करते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु और सेवा कर GST को तर्कसंगत बनाने को आजादी के बाद का सबसे बड़ा सुधार बताया है। श्री मोदी ने कहा कि इस कदम से कई वस्तुओं पर कर में कटौती होने से मध्यम वर्ग की जेब में पैसा आने की संभावना है उन्होंने कहा कि रोटी व जीवन रक्षक दवाओं जैसी जरूरी वस्तुओं पर कर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दो स्लैब कर 22 सितंबर यानी नवरात्र के पहले दिन से लागू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को नवरात्र के पहले दिन से ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और इस बार धनतेरस और भी ज्यादा रौनक करने वाला होगा। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिवाली तक वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी में सुधार की घोषणा की थी, लेकिन इस महीने की 3 तारीख को ही जीएसटी परिषद ने दरों को युक्तिसंगत बनाने को मंजूरी दे दी है। ये फैसला आम आदमी को ध्यान में रखकर लिया गया है। इन सुधारों के बाद अब अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में केवल 5% और 18% के 2 स्लैब रह गए हैं। 40% का एक अन्य स्लैब तंबाकू और विलासिता की वस्तुओं पर लागू किया गया है। ये दरें इस महीने की 22 तारीख से प्रभावी होंगी। इन सुधारों से कई क्षेत्रों में कर की दरें कम हुई हैं और नागरिकों के लिए जीवन आसान हुआ है। इसी क्रम में आज चर्चा शिक्षा क्षेत्र में हुए सुधारों की।
जीएसटी परिषद ने बच्चों की पढ़ाई से जुड़े कई स्टेशनरी उत्पादों को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया है और जल्द ही इनकी कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी। कॉपी, पेंसिल, शार्पनर, ग्राफ बुक, नक्शे, ग्लोब और नोटबुक जैसी वस्तुएं जिन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, उसे अब कर मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा स्टेशनरी सामान जैसे ज्योमेट्री बॉक्स और कलर बॉक्स पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि कई वस्तुओं से जीएसटी हटा दिया गया है, जबकि कई अन्य पर इसे घटाकर 5% कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इससे आम नागरिकों पर शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक बोझ कम होगा,
जिसमें विशेष करके भारत की सामान्य लोग, भारत की मध्यवर्गीय, भारत की उद्योग, अनेक उपक्रम का एजुकेशन इंस्ट्रूमेंट की बहुत सस्ता हुई है। टैक्स कई चीजों में टैक्स उठ गया है, कई चीजों में 5% की ब्रैकेट में टैक्स आ गई है। इसमें शिक्षा पे नागरिकों की स्पेंडिंग बढ़ेगी, देश में इकोनॉमी की गति बढ़ेगी, सर्कुलर इकोनॉमी को बल मिलेगा, यह मेरा पूरा विश्वास है।
जीएसटी परिषद का यह कदम खासकर उन परिवारों के लिए राहत भरा है जो बच्चों की पढ़ाई के खर्च को लेकर परेशान रहते हैं। जीएसटी की दरों में हुए इस बदलाव से शैक्षणिक सामग्री की कीमतों में गिरावट आएगी और अभिभावकों का आर्थिक बोझ कम होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
दिल्ली के लोगों ने भी जीएसटी दरों में कटौती का स्वागत किया है। लक्ष्मी नारायण ने आकाशवाणी को बताया कि जीएसटी दरों में कटौती से विद्यार्थियों के लिए स्टेशनरी सस्ती हो गई है।
अभी जीएसटी के जो रेट कम किए हैं सरकार ने, हिसाब से मैं ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। इसमें कम से कम बच्चों की जो पढ़ाई पे इतना खर्चा होता है कि हिसाब से अब देखा जाए तो साथ में जैसे स्टेशनरी है तो उनको वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा और उस हिसाब से कदम बहुत ही सराहनीय है।
दिल्ली की एक अन्य निवासी अलीशा ने कहा कि जीएसटी सुधारों से रोजमर्रा की चीजें खरीदना आसान होगा।
जैसे गवर्नमेंट ने नमकीन, कॉर्नफ्लेक्स, पास्ता, भुजिया, नूडल्स, चॉकलेट वगैरह पर टैक्स को कम किया है, इससे काफी बेनिफिट होगा। चीजों के रेट्स और कम हो जाएंगे तो हम अब ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे। इन सुधारों से बहुत ज्यादा फायदा होगा और हमारे पैसे भी बचेंगे, तो हाँ, ये अच्छा फैसला लिया है गवर्नमेंट ने।
दिल्ली पुलिस की द्वारका जिला टीम ने राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे 15 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर निर्वासन के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि पिछले महीने गिरफ्तार किए गए इन नागरिकों में 13 नाइजीरियाई और 2 बांग्लादेश के नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक बिना वैध वीजा के भारत में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रह रहे थे। इस सूचना पर उन्होंने कार्रवाई की और उन्हें सफलता हाथ लगी। सरस आजीविका मेला 2025 दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आज से शुरू हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि पहली बार इस मेले का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है।
दिल्ली में आज से शुरू हुए सरस आजीविका मेले में देश भर से आई स्वयं सहायता समूहों की 400 से अधिक महिलाएं अपने स्टॉल के माध्यम से अपनी प्रतिभा और उद्यमिता का प्रदर्शन कर रही हैं। इस वर्ष के मेले की थीम लखपति दीदी है। इस मेले में हस्तशिल्प, हस्तकरघा और घरेलू उत्पादों के साथ साथ यहां इंडियन फूड कोर्ट भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। यह मेला महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक अहम कदम है। राजस्थान से आई एक प्रदर्शक राजकमल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि वह कई सालों से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और इसके जरिए उन्हें बड़ी संख्या में लोग उनका सामान खरीद भी रहे हैं।
मैं समूह में जुड़कर मैं अचार बनाती हूँ, मैं केरी का अचार बनाती हूँ, मैं मिर्ची का बनाती हूँ, मैं गुंदे के बनाती हूँ, मैं केर का बनाती हूँ, मैं लेसवा का बनाती हूँ।
वहीं कर्नाटक से आई एक अन्य प्रदर्शक मंजरा माधेश्वरी ने बताया कि अपने उत्पादों को लोगों तक पहुँचाने का यह मेला एक अच्छा अवसर है। उन्होंने बताया कि इस मेले में भाग लेकर वह अपनी हैंडलूम साड़ियों को और आगे बढ़ाना चाहती हैं।
आप सब आइए और हमारा साड़ी देख के लेके जाइए, हमको सपोर्ट कीजिए। हमारे पास सिल्क भी मिलता है, कॉटन भी मिलता है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं।
इस मेले में कुल 400 स्टॉल लगाए गए हैं जिनमें हस्तकरघा, हस्तशिल्प और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों की प्रदर्शनी और बिक्री की जा रही है। सकलेन अख्तर के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नितिका गुप्ता।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में आज शाम 5 बजे यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर 207.16 मीटर था। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी के 6 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। आयोग ने बताया है कि यमुना का जलस्तर 206 मीटर पार करने की वजह से निचले इलाकों में रहने वाले लगभग 15,000 लोग प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें प्रभावित जिलों में तैनात हैं और निचले इलाकों से लोगों को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी के सभी जिलाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर यमुना नदी के जलस्तर और तेज बारिश की स्थिति की समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकार की पूरी टीम सतर्क है और हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बीच पंजाब और उत्तर भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा राहत और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम भेज रहा है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में एम्स नई दिल्ली में रेडियो डायग्नोसिस विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर अमरिंदर सिंह मल्ली ने बताया कि इस टीम में 22 डॉक्टर्स और नर्स शामिल हैं।
इसमें हर प्रकार के हमारे डिपार्टमेंट्स लिए हैं, उसमें सबसे पहले मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, सर्जरी, रेडियो डायग्नोसिस, लैब मेडिसिन, सेकेट्री, पेडियाट्रिक्स और गायनेकोलॉजी, ये सभी विभाग के लोग हम लेके जा रहे हैं। और हमारा मेन कारण यही है कि उधर जाके जितने भी अफेक्टेड एरियाज हैं उनके जाके उनको जितनी हम सर्विसेज अपनी दे सकें उतना हम देंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ओणम और ईद उल मिलाद की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा है कि ओणम केरल की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और परंपरा का अनूठा उदाहरण है और ये पर्व सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासों के अतिरिक्त एकता, सहयोग और भाईचारे के महत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ओणम पर सबके लिए खुशी, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की है। उन्होंने कहा कि ये त्योहार आशा और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक है। ईद उन नबी के मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने एकता और मानवता का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की है कि ईद समाज में शांति और खुशहाली लाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी ओणम और ईद ए मिलाद उन नबी के पर्व पर आज सभी शहरवासियों को बधाई दी है। राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में आज दिनभर मौसम साफ रहा, वहीं कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश हुई। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री और वहीं न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को सार्वजनिक वितरण संबंधी राष्ट्रव्यापी व्यापक मूल्यांकन रिपोर्ट सौंप दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, देश के विकास में महिलाओं को अग्रणी भूमिका प्रदान करने का सबसे प्रभावी उपाय बेटियों को सर्वोत्तम शिक्षा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शिक्षक दिवस पर दिल्ली के शिक्षकों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु और सेवा कर को तर्कसंगत बनाने को आजादी के बाद का सबसे बड़ा सुधार बताया। सरस आजीविका मेला 2025 मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आज से शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।